जी जनाब, अब फरमाइए क्या सवाल था।
ये जो है वसब बितिस में रब्बिकल अजीम
जी,
इसमें जो लफ्ज है अजीम, ये इसके जो मायने आप कहते हैं कि ये छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखने वाला, इसकी कोई मिसाल यानी किस तरह, मुझे इसका ना जैसा लगता है कि डिटेल्ड किसी चीज।
बिल्कुल ठीक लफ्ज आपने बोला जी, तफसील उर्दू में कहते हैं, छोटी छोटी बातों को जुजियात कहते हैं, अंग्रेजी में इसी को डिटेल कहते हैं। यानी डिटेल, हर चीज की डिटेलिंग, डिटेल्स जो होती हैं वो दर हकीकत किसी भी चीज की जुजियात को तय करती है। अब मसलन यह है फसब्बे, पढ़ें जरा दोबारा ये आयत क्या है।
फसब्बे बे इसमे रब्बिकल अजीम,
अब देखें फसब्बे बे इसमे रब्बिकल अजीम, तुम्हारे अजीम रब के नाम पे। फसब्बे यानी काम करो, सबह का मतलब है ड्यूटी सर अंजाम देना। अब आप गौर करें कि हमारी अप्रोच में कितना फासला है कि हम जन्नत के तलबगार तो हैं। अब जन्नत के तलबगार तो हैं, लेकिन जन्नत जो है वो एक तरह की मरात में से है जो ड्यूटी वालों को मिलेगी। अब हम ड्यूटी की तरफ मतवज्जो नहीं, हमें पता ही नहीं कि हम किस ड्यूटी पे अपॉइंट किए गए हैं, या अल्लाह ने हमें किस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए तख्लीक की है। अब जब हम अल्लाह के इस निज़ाम को नहीं समझे, तो सभे का मतलब हमने कर दिया पाकीजगी बयान करना। अगर सिर्फ पाकीजगी बयान करना ही मकसूद होता तो ये सारा निज़ाम खड़ा करने की क्या ज़रूरत थी। तो असल में बात आ गई डिटेल्स को जानने की। अजीम का मतलब है जो ऐसा बड़ा जिसकी गिरफ्त सारी छोटी छोटी बातों पे भी हो, कोई चीज उसके कंट्रोल से बाहर ना हो। तो अल्लाह की वो सिफत जो हर चीज को कंट्रोल करती है, उसका नाम है अजीम। और चूंकि वो सारे सिस्टम को इन डिटेल कंट्रोल कर रहा है, उसकी डिटेल्स में जाकर छोटी से छोटी बात आप गौर करें जरा। इंसान बना है, आप कहते हैं जी ह्यूमन बॉडी सेल्स से, सेल्स की आगे किस्में देखें, फिर उनके आगे स्ट्रक्चरिंग देखें, नर्व सेल्स और हैं, मसल के सेल्स और हैं, ब्रेन सेल्स और हैं, बालों के सेल्स और हैं, जिल्द के सेल्स और हैं, हर उज्व के सेल्स की साख्त अलग है। फिर हर सेल जो है वो बना हुआ है आगे कितने ही मादों से, और उसके बाद वो क्रोमोसोम्स हैं उसके अंदर, फिर जीन्स हैं, फिर जीन से आगे नीचे अंदर उतरें तो वहां पे आपको फिर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, फिर मॉलिक्यूल्स से नीचे अंदर जाएं तो एटम्स मिलते हैं, फिर और अंदर जाएं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और फिर क्वार्क्स और पता नहीं क्या क्या। तो ये इतनी डिटेलिंग सब अल्लाह की सिफत अजमत से रिलेट करती है। हमारे जहन में बस एक तस्वीर बना दी गई बड़ेपन की, उसके लिए अल्लाह ने लफ्ज अकबर इस्तेमाल किए। ठीक हो गया जी। जी और
ये जो तस्वीर है
जी जी,
ये तो तफसील है, इसी में ये कनेक्टिविटी सारी चीजें
बेशक
रिजेम्बलेंस
सब कुछ इसी में आ गया। कनेक्टिविटी से लेकर देखे ना, आपका फेफड़ों का अमल किस तरह से मेदे के अफाल से कनेक्टेड है, मेदे का अफाल के अफाल जो है वो किस तरह आंतों के अफाल से कनेक्टेड है, आंतों की प्रॉपर फंक्शनिंग किस तरह जिगर को कंट्रोल करती है, और फिर जिगर की फंक्शनिंग किस तरह दिमाग को कंट्रोल करती है। ये सारी चीजें आपस में इंटर रिलेटेड हो गई। इसी तरह इंसानों के दरमियान की कनेक्टिविटी जो है, वहां से लेकर आपके बॉडी पार्ट्स की आपस की कनेक्टिविटी तक, और फिर बॉडी पार्ट्स के अंदर जो उसके सेल्स हैं उनकी आपस की कनेक्टिविटी। अब नर्व सेल्स किस तरह से दूसरे सेल्स को कनेक्ट किए रखते हैं, ये सारी चीजें इसी में आ जाती हैं। जी जी असद साहब,
अस्सलाम सर।
जी वालेकुम अस्सलाम।
जी सर, मेरा सवाल ये था कि लोक अलम में कुछ मतलब चैप्टर में ये बताया
माइक पास कर लें।
लोक अलम में कुछ चीजों का ये बताया गया कि कुछ सिफात का अक्स इंसान में मुंतकिल हुआ और कुछ सिफात मुंतकिल हुई, तो ऐसा मतलब क्यों रखा गया और इससे मतलब क्या मुराद है मतलब?
नहीं, यहाँ तो ये कहा गया कि सिफात का अक्स, यानी कि अल्लाह की जितनी भी सिफात हैं उनका अक्स मुंतकिल किया गया, ठीक हो गया। अब आप उनमें से किस किस सिफत को अपने अंदर उभारते हैं ये आपकी चॉइस है, किस सिफत पे कंसंट्रेट करते हैं, किस सिफत को फोकस करते हैं, यानी उसके अक्स को जो आपके अंदर है उस पे फोकस करके उसको कितना उजागर करते हैं। आपके अंदर जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जितनी भी क्वालिटीज हैं, जितनी भी बातें हैं, ये सब अल्लाह की सिफात का अक्स है। मसलन आपको तजस्सुस होता है, तजस्सुस का मतलब आपके जेन में किसी चीज की तलाश का जज्बा जागता है, या आप ये करते हैं कि भाई हम किसी चीज को समझ लें, जब आप समझने की काविश करते हैं आपके अंदर तजस्सुस जागता है। अब ये तजस्सुस जो है ये आपको अल्लाह की सिफते मुहीत का अक्स है। अब ये तजस्सुस क्या है? अल्लाह की सिफते मुहीत का अक्स है। इसी तरह अब आप के अंदर एक सिफत है कि भी मैं लोगों के सामने अपने आप को अच्छा पोर्ट्रे करूं, तो आप इखलाक से काम लेते हैं। अब इखलाक जो है ये अल्लाह की सिफत तखलीक, देखें इखलाक में खल्क नजर आ रहा है, खल्क अल्लाह करता है तो वो तखलीक कहलाती है, आप उसे बरतते हैं तो ये आपका इखलाक कहलाता है। इखलाक जो है दरअसल क्या है, आप अपनी तस्वीर दूसरे के जहन में तखलीक कर रहे हैं। जैसा आपका बिहेवियर होगा, जैसा आपका एटीट्यूड होगा, फिर वैसी ही आपकी तस्वीर बनेगी दूसरे के जहन में। तो ये इखलाक जो है ये अल्लाह की सिफत तखलीक का अक्स है आपके अंदर। अब हमने इसको महदूद पैमाने में ईजाद करने तक रखा, वो अल्लाह की सिफत बारी भी है। हमने इसको बच्चे तखलीक करने तक रखा, वो अल्लाह की सिफत रहीमी का अक्स है। बात समझ में आ रही है आपको?
जी सर।
तो कुछ अफाका हुआ? नहीं
जी बिल्कुल, मतलब ये समझ में तो आया है कि मतलब जो है तजस्सुस की सलाहियत के अक्स के मुताबिक जो है तमाम सिफात को समझने की कोशिश करना है, ये बात।
बिल्कुल, अल्लाह की सिफत मुहीत यानी अहाता करने की, आप जितना भी अहाता करना चाहेंगे। अब आप जाहिर है कि हमारा शऊर तरतीब बार चलता है, तो बारी बारी करेंगे, एक चीज को समझेंगे, फिर दूसरी चीज, फिर तीसरी चीज, इस तरह दर्जा ब दर्जा, बारी बारी और दर्जा ब दर्जा। हम जितना समझते जाएंगे हमारा जेन वसी होता चला जाएगा।
शुक्रिया सर। अच्छा सर, ये लोक अलम में
जी,
आलम रोया की जो सलाहियतें बयान की हैं कशफुल जू के अलावा बाकी सलाहियत इतनी डिटेल बयान क्यों नहीं कही?
वो असल में हजूर मुर्शिदे करीम ने बताया था कि हजूर कलंदर बाब औलिया ने जब ये किताब इशाद के लिए तैयार हुई तो बहुत कुछ कटवा दिया। वो इसलिए कटवा दिया कि लोगों ने अगर उस तरफ वो समझने में बगैर मतलब है समझे उस तरफ चल पड़ेंगे तो वो उनको उनके शौरी निजाम को जिक पहुंचेगी, तो वो इसलिए हटा दिया गया। बिटवीन द लाइन उन्होंने सारी बातें बता दी, क्योंकि देखे ना शुरू में तो ये इस्तलाहात है ना, आलम जू और ये सब कुछ, ये इस्तलाहात बाद में जाके कहाँ रही। आधी किताब के बाद आप गौर करें वो सारी इस्तलाहात का चैप्टर खत्म कर दिया उन्होंने।
जी जी बिल्कुल।
अब उसके पीछे देखे ना उन्होंने दर्जात तो हर चीज के बयान कर दिए, लेकिन वो जिस तरह से लोगों के जहां एहतमाल था कि लोगों के जहन उलझ जाएंगे वो चीजें हटा दी उन्होंने।
सही। लेकिन सर समझने के लिए तो मतलब बयान करी, वैसे तो बयान करी हुई है समझने के लिए।
जी जी उसके सारे दर्जात बता दिए। अब जो कशफुल जू से लेकर वो कशफुल वजूब तक जितने भी 6 दर्जे हैं वो सारे बता तो दिए।
जी बिल्कुल
ठीक है। अब हमने उस पे गौर करके उसको खुद एक्सप्लोर करना है।
सही।
ठीक हो गया ना। वो ज्यादा डिटेल ना देने की वजह यह है कि आपका शौर उसमें ज्यादा दिलचस्पी ना ले। और शऊर अपनी डेवलपमेंट पे मतवजो रहे, यानी शऊर को ठीक करना है ना। पहला दर्जा तो शऊर को ठीक करना है और उसको इस काबिल बनाना है कि वो ला शऊर से आने वाली तलात को खुद वसूल करे। जब वो खुद वसूल करेगा तो फिर वो जाहिर है जब बात आप खुद समझना सीख जाते हैं तो फिर अंदर से जो चीजें वो उभारनी होती हैं वो मुर्शिद उभारता चला जाता है।
अच्छा सर उसमें एक और वो बताया हुआ कि इनखलाए ज़हनी में जो है ना वो फना का मुराकबा कर सकते हैं।
जी हाँ। फना का मुराकबा क्या है? अब ये गौर करें जरा। आप ये तसव्वुर करते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं हूँ ही नहीं, रोशनी का एक नुकता हूँ, करते हैं या नहीं? अब यही मकसद आपको तसव्वुर शेख करने से भी हासिल हो जाता है अगर आप सही तरह करें तो। कैसे? जब आप ये तसव्वुर जमा के तसव्वुर शेख करते हैं कि मैं अब्बा हूं, मैं अपना पीरो मुर्शिद शेख हूं, मैं शेख हूं, यानी आप ये सोचते हैं कि आप बनफ्स नफीस अपने शेख, आप नहीं बैठे हुए, शेख बैठा हुआ है, तो क्या हुआ? आपकी नफी हो गई या नहीं हो गई? तो जब आपकी नफी हो गई तो मुझे बताइए इससे, यही तो इनखलाए ज़हनी कहलाता है। जब आप अपने ज़हन को खाली कर लेते हैं और अपने मुर्शिद को तारी कर लेते हैं अपने अंदर, तो क्या होता है? आप चलते हैं फिरते हैं बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे आपका मुर्शिद चलता फिरता है। आप बात करते हैं तो आप कोशिश करते हैं उसी लहजे में बात करें जिस लहजे में मुर्शिद करीम फरमाते हैं। जब आप किसी मामले को हैंडल कर रहे हैं और आपके जहन में है कि मैं नहीं कर रहा मेरा मुर्शिद कर रहा है, तो क्या हो गया? आपका जहन तो खाली है। अब जो भी आपके अंदर से आ रही है तलाब वो कहाँ से आ रही है? ये इसका क्लियर हो गया कि ये अलहदा से हमें, ये आम बंदे के लिए तो ठीक है लेकिन जो लोग किसी सिलसिले में बैत हैं और वो तसव्वुर शेख का मुराकबा करते हैं, अगर वो इसको बजाय इसके के तसव्वुर शेख करें यानी के तस्वीर कशी करके मुर्शिदे करीम को सामने बिठा के तो खुद दोनों हाथ जोड़ के उनके संघासन के सामने बैठ के उनको प्रणाम ही करते रहें, तो ये क्या बात हुई? ये तो कोई तरीका ही नहीं है। असल में मुराकबे में हम नकल करते हैं, जैसे छोटा बच्चा اپنے باپ کی نقل کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس میں باپ کی سب صفات منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں جب ہم تصور شیخ کریں گے اس طرح سے کہ ہم ان کی نقل کر رہے ہیں، تو ہمیں ان کی طرز فکر عطا ہوگی، پھر ہمیں ان کا رفتہ رفتہ ذہن عطا ہوگا، پھر ہمیں رفتہ رفتہ ان کی صلاحیتیں جو ذہن میں ہیں وہ بھی منتقل ہونا شروع ہو جائیں گی، اور پھر اس کے بعد ان کا علم بھی منتقل ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو کیا چار چیزیں منتقل ہوئیں؟ پہلی چیز ہے طرز فکر، دوسری چیز ہو گئی ان کا ذہن، تیسری چیز ہو گئی ان کی صلاحیتیں، ان کی کیپیبلٹیز، ان کی سکت۔ پھر اس کے بعد جب یہ سکت بن گئی، ذہن بن گیا، طرز فکر آپ کی مرشد جیسی ہو گئی، تو پھر علم بھی ان کا عطا ہو جائے گا۔ کیوں جی؟
جی بالکل سر،
ٹھیک ہو گیا؟
جی بالکل۔
جی عمرانہ،
السلام علیکم۔
جی وعلیکم۔
حمزہ، حمزہ سے کیا مراد ہے؟ حمزہ کیا ہے؟
آہا آہا، آپ آئینے میں خود کو دیکھتے ہیں کبھی؟ دیکھا آپ نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے؟
جی۔
اس میں آپ کو کون دیکھتا ہے؟
میں خود ہی دیکھتی ہوں بھائی۔
اب آپ نے کہا میں خود ہی دیکھتی ہوں، میں کہہ رہا ہوں وہ آپ جیسا ایک دوسرا وجود ہے۔
اچھا،
وہ آپ کا ہمزاد ہے، آپ جیسا ہے نا، ہمزاد یعنی آپ جیسا۔ اب یہ وجود فرض کریں کہ آئینے کے بجائے آپ کو ویسے دکھنے لگے بغیر آئینے کے، تو کیا ہوگا؟
میں تو پریشان ہو جاؤں گی، یہ کیا چیز ہے بھائی؟
اس کا مطلب ہے شعور کی سکت ہی نہیں ہے، پریشان ہونے کا مطلب ہے یکسوئی نہیں ہے، پریشانی کا لفظی مطلب ہے کہ بھی ذہن بکھر گیا، کا مطلب ہے کہ آپ کے، آپ ذرا اس کو امیجن کریں نا، ذرا تصور تو کریں کہ آپ آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہے ہیں، وہ عکس کون ہے؟ وہ آپ کا ہمزاد ہی تو ہے۔
اچھا،
اگر میں کہوں کہ عکس ہے، فرض کریں، غور کریں، آپ اپنا دایاں ہاتھ ہلائیں ذرا آئینے کے سامنے اور نوٹ کریں کہ کیا اس کا دایاں ہاتھ ہل رہا ہے؟ نہیں، اس کا بایاں ہاتھ ہل رہا ہے۔ آپ اپنی دائیں آنکھ بند کریں تو آپ اس کے، آپ کے تناظر میں اس کی وہ بائیں آنکھ ہے، ہاں یا نہیں؟
ہاں ہاں بالکل
بھائی۔ اگر آپ کے دایاں جو ہے وہ اس کا بایاں بن گیا، تو اصولاً تو آپ کے پیر اس کے سر کی طرف ہونے چاہیے، یعنی پورا عکس الٹا ہونا چاہیے۔
ہاں،
اور کریں۔ اب میں نے مثال دی، مثال یہ عرض کی کہ جس طرح آئینے میں ہم خود کو دیکھتے ہیں، یہ میں جو خود کو دیکھ رہا ہوں، یہی تو ہم ذات، یعنی میرے جیسا ایک دوسرا وجود، میرا اپنا وجود کا دوسرا رخ۔
اوکے،
میں نے مثال میں سے آئینہ جب آپ نے ہٹا دیا، اور فرض کریں کہ وہ ہوا میں ہی کھڑا رہ گیا، آئینہ ہٹ جائے اور آپ کا عکس وہیں کھڑا رہے، تو اسے آپ کیا نام دیں گے؟ ہمزاد ہی رہے گا نا وہ تو۔
ہاں
جی۔
اچھا، بعض روحیں یہ ہے کہ وہ جو فرشتے لے جا رہے ہیں وہ فرار ہو جاتی ہیں، وہ کیا ہمزاد یا روح؟
نہیں نہیں، وہ تو نسمہ ہے نا، دیکھیے وہ نسمہ ہے، وہ نسمہ ہے، دیکھیے نسمے کا لفظ ابا نے استعمال کیا ہے۔ نسمہ کہتے ہیں ہمارے ذہن کو، جب ہم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو جسم تو یہی رہ جاتا ہے، اس جسم کو کون چلا رہا ہے؟ ہمارا نسمہ، نسمہ روح تو وہ انرجی ہے جس نے نسمہ کو بنایا، جو ہمیں سارے کام سر انجام دینے کی طاقت مل رہی ہے، وہ روح سے مل رہی ہے۔ اصل چیز ہے ذات، جس چیز کو آپ میں بولتے ہیں، یہ میں کیا ہے؟ یہ میری ذات ہے، اور میری ذات اللہ کی ذات کی تجلی کا ایک نقطہ ہے۔ आपकी जात, अल्लाह की तजल्ली का, अल्लाह की जात की तजल्ली, तजल्ली जात का एक दूसरा नुक्ता है। ये बात यहां इसे जहन नशीन कर ले। अब ये जो जात है वो काम लेती है रूह से, वनफाक्तो फी है मिनर रूही, अल्लाह ने अपनी रूह में से कुछ फूंका, ठीक है, वहां जो हमारी हालत थी वो रूह की थी, तो रूह के अंदर अल्लाह ने अपनी रूह में से कुछ फूंक कर हमें मुमताज और मुशर्रफ कर दिया, लेकिन हम इन बातों को समझे ही नहीं। अब जब दुनिया में आए तो ये नस्मा ने ये मादी जिस्म बनाया, मादी जिस्म को चला कौन रहा है? नस्मा, हमारा जहन, एक दिमाग है जो कि खोपड़ी के अंदर भेजा, जिसे कहते हैं मगज, और एक वो गैर मरई चीज है जो जिसमें ख्याल आ रहे हैं और वो ख्याल तस्वर बन रहे हैं और फिर वो एहसास बनते हैं और वो जहन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस की सूरत मुंतकिल होते हैं, वहां से वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जिस्म में दौड़ करती हैं, गदूदों में काम होता है, केमिकल इम्पल्सिस बनते हैं, वहां से फिर मोटर इम्पल्सिस, यानी आजा की, उजलात की, और हमारे नर्व्स में हरकत पैदा होती हैं। ठीक हो गया? अब जब हम फौत हो जाते हैं तो क्या होता है, जिस्म जिससे नस्मा काम ले रहा था वो उसकी रफ्तार का साथ नहीं दे सकता, लिहाजा वो फारग हो जाता है। ठीक हो गया?
अच्छा, तो वो कौन से नस्मा जो फरार होने की कोशिश करते हैं, वो क्यों नहीं जाना चाहते?
जब दुनिया में उसने जहन ही नहीं बनाया अल्लाह की तरफ जाने वाला, क्या होगा, वो मरने के बाद जाना चाहेगा अल्लाह की तरफ?
हाँ।
नहीं जाएगा? हाँ नहीं, वो तो नहीं जाएगा, वो तो अपने आप को भागेगा। अच्छा, अल्लाह के अलावा यहाँ है कुछ नहीं, जब भागेगा तो क्या होगा, तकलीफ में होगा ना, परेशानी में होगा, क्योंकि उसको ठिकाना ही नहीं मिला। भाई फरिश्ते उसको कहीं जहन्नम में थोड़े घसीट के ले जा रहे थे, वो तो उसको उसके ठिकाने पे पहुंचा रहे थे। भाई आलम में राफ में आपका एक मुकाम मुतय्यन करना चाह रहे थे, ठीक है, आपकी जहनी वुसत और सकत के मुताबिक उन्होंने आपका एक मुकाम का तायुन करना था, वो आपको वहां ले जाके आपके घर बिठाना चाह रहे थे कि अब आप अमरीका तशरीफ ले आए हैं, ये अपार्टमेंट आपका है। आप कहते हैं नहीं, वहां से निकलकर आप एयरपोर्ट से गायब हो जाते हैं। अब बताइए क्या होगा, आपके पास ठिकाना ही कोई नहीं है रहने को। जब ठिकाना ही कोई नहीं है तो क्या होगा, आप सड़कों पे मारे मारे फिरेंगे, क्योंकि आप किसी जगह आराम से तो बैठ नहीं सकते, इधर पुलिस का डर कि रास्ता में पकड़ ना लें, कोई चेकिंग ना कर ले। गौर करें जरा, ये मिसाल दे रहा हूं।
अच्छा,
तो चूंकि उसका जहन ही नहीं बना हुआ, लिहाजा वो देखे ना, अब एक चोर आदमी है, हैं? अब पुलिस उसे वहां एयरपोर्ट से निकल कर कहती है आओ मैं तुम्हें अपार्टमेंट तक पहुंचा दूं, वो समझ रहा है मुझे पकड़ने आए हैं, और वो भाग गया, वो भाग लिया, वो चूंकि पकड़ने तो आए नहीं थे इसलिए उन्होंने भागने दिया, मर्जी तुम्हारी।
तो वो खौफजदा हुआ क्या?
तो खौफ उसने जिंदगी में यहाँ पे समेटा ना, यहाँ जैसा जहन बन गया वही जहन ऊपर गया।
जी।
सही हो गया ना?
जी।
तो अगर यहाँ उसका जहन बन गया कि जी ये सारा निजाम वो समझे बैठा है, तो वहां ऊपर जाएगा तो उसे क्या होगा, अब उसे पता है कि भाई ये सिपाही जो आए हैं ये मुझे मेरे आशियाने तक या आस्ताने तक लेके जाएंगे, तो वो उसको प्रोटोकॉल समझेगा, वो कहेगा कि भाई थैंक यू वेरी मच, हाँ जी चलें, कहाँ जाना है। गौर करें, ये दुनियावी मिसाल दे रहा हूं, लेकिन बहरहाल वहां का सिस्टम इससे ज्यादा बेहतर है।
अच्छा, वहां पे आलम एराफ में जो सब रह रहेंगे तो तफरी ना, कभी उनको तफरी करना जाना तो वो शहर के लिए दूसरे बाद के दूसरे दुनियाओं में जाया करेंगे?
जा सकते होंगे अगर उनका जहन बना होगा तभी। अगर आपको पता ही नहीं है कि दूसरे सयारे हैं तो आप जाना चाहेंगी? अगर आपको इस मादी जोन में यानी इस मौजूदा जिंदगी में आपके शऊर में ये बात ही नहीं आई कि और दुनियाएं भी हैं, आप तो अपने कमरे में ही बंद रह जाएंगे। भाई एक बच्चे को आपने कभी घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया, उसका जहन घर की हदों तक है, वो निकलेगा बाहर सैर करने जा सकता है? क्योंकि वो समझता है कि बस यही सारी दुनिया है। तो इसी तरह जितना जहन महदूद होगा, वही महदूद जहन अगर ऊपर चला गया तो आप बताइए कहाँ सैरें करेंगे? वहां चार काम करने, आपने खाना पीना घूमना फिरना, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, ठीक है या नहीं? साथ में वो ड्यूटी करना जो जिस ड्यूटी के लिए अल्लाह ने आपको तखलीक किया वो भी करनी है, लेकिन वही करेंगे ना जिनको शऊर होगा। जिनको शऊर ही नहीं है वो ड्यूटी क्या करेंगे? जब ड्यूटी नहीं करेंगे तो प्रोटोकॉल भी नहीं मिलेगा बाकी जिंदा रहने का। एक है वहाँ सिस्टम, वो आप रहेंगे,
वो आम रूटीन जिंदगी गुजारेंगे, और जो वली वल्ला है उनकी ड्यूटी वहाँ भी बड़ी सख्त होगी, उनकी बहुत मसूफियत होगी।
जाहिर है यही अब्बा ने बताया कि भाई वहाँ तो सर खुजाने की फुर्सत नहीं होगी, क्यों काम कर रहे हैं
तो वहाँ पे जिम्मेदारी है।
हाँ जी, फसब्बे बेस में रब्बे कल अजीम, अभी अपने शुरू में इन्होंने सवाल पूछा तो फसब्बे काम से लगे रहो, हैं? अल्लाह के काम से, अल्लाह के काम से, अपने कामों से नहीं, अल्लाह के कामों से लगना जो है ये है तस्बीह। हमने इसका तर्जमा कर दिया वो दाने घुमाते रहो तस्बीह के,
जो अल्लाह ने ड्यूटी दे दी है उसको बॉसिनों को भी निभाओ
जी, पूरी दिल जमाई से उस ड्यूटी का। अब गौर करें पौधे क्या कर रहे हैं? पौधे जो है वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, क्या सर
जी?
वो ऑक्सीजन बना रहे हैं, वो निशास्ता प्रोड्यूस कर रहे हैं, लगे हुए हैं ना। यही अल्लाह ने कहा फसब्बे बेस में रब्बे कल आला, कि अपने आला रब के नाम से तुम काम करते रहो। सभे लिल्लाह माफ समावाते व माफ लट, जो कुछ के जमीन और आसमानों में वो अल्लाह के लिए काम कर रहा है, यानी हर चीज अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रही है सिवाय हजरत इंसान के। आप गौर करें अब्बा ने कलंदर शऊर किताब में चींटियों के मुआशरे की मिसाल दी, शहद की मक्खियों के मुआशरे की मिसाल दी, दी है या नहीं?
बिल्कुल दी है।
अब आपने उसमें नोट किया कि वहां हर चींटी अपने फराइज पूरे कर रही है, हर शहद की मक्खी अपने फराइज के सरंजामदही में मसरूफ है। हम क्या कर रहे हैं?
अच्छा, अगर
हम दूसरों को देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहा, हमारी हर वक्त की कड़वाहट क्या है, उसने ये क्यों किया, उसने ये क्यों नहीं किया, हाँ या नहीं?
बिल्कुल, अगर हमें जैसे हमारे शादी के हो गई शौहर की जिम्मेदारियां अल्लाह के ये नेकी कि हम अल्लाह आपके लिए कर रहे हैं तो अल्लाह ने ये हमें ड्यूटी दी है हम कर रहे हैं।
बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। देखें आपको माँ औरत बनाया किसने बनाया, उसको मर्द बनाया किसने बनाया, उसने अपने फराइज अंजाम देने, आपने खातून होने के नाते अपने फराइज अंजाम देने। अब आप बीवी बनी, अगर आप बीवी बनी तो अब आपको बीवी का रोल अदा करना है, तो उसमें जो जो आपके जिम्मेदारियां हैं वो आप उन्हें पूरी करें, जो उसकी जिम्मेदारियां हैं एज ए शौहर वो पूरी करें, फिर आप माँ बन गई। अब माँ की जिम्मेदारियां बीवी की जिम्मेदारियां भी पूरी करेंगी, माँ की भी करेंगी, इजाफी हो गई ना। अब आप एक घराने में शादी होकर गई तो आप एक बहू बनी, भाभी बनी, एक बीवी बनी, और करें तीन रिश्ते आपको मिले, तो गोया तीन तरह की जिम्मेदारियां मिली, ठीक हो गया? उनको भी एक नई जिम्मेदारी मिली। अब वो वालदा जो जिसके घर दुल्हन गई वो सास बन गई, अब वो कैसी सास बनी वो आपके सामने है, मुआशरे में चूंकि तरबियत नहीं है लिहाजा कैसी सास बनी वो आपके सामने है। अल्लाह हाजल कयास, अब औरत घर में झाड़ू पोंछा दे रही है, हंडिया पका रही है, कपड़े धो रही है, तो अगर वो ये मान ले कि अल्लाह ने मुझे मुझसे यही काम ले रहे हैं, अब वो खुश होके करे तो मुझे बताइए कैसा मजा आएगा।
तो इस अमल से अल्लाह राजी खुश होंगे कि हम
अल्लाह को, अल्लाह को खुश करने का सबसे आसान तरीका बताऊं? आप खुद खुश रहें। मेरी वालदा ने एक दफा बात, मैंने ये सवाल पूछा तो उन्होंने फरमाया कि भाई, मैंने उनसे पूछा मैं आपको कैसे राजी रखूं, आप तो किसी तौर काबू ही नहीं आती हूँ। उनका मिजाज जरा सख्त था तो वो बहुत ही डांट डपट होती थी हमारी, तो मैंने कहा आखिर आपको मैं कैसे खुश कर सकता हूँ। तो उन्होंने बहुत ही एक अजीब बात बताई, कहने लगी अरे पगले, माँ तो बच्चों को खुश देख के खुश होती रहती है, और करें, अगर बच्चा खुश है तो माँ खुश होगी या नहीं?
अगर हम खुश है तो अल्लाह भी खुश
है। एनी जिन्नी गल है, हम चले अल्लाह को खुश करने, हमारी औकात क्या है, हैं? हमारी हैसियत क्या है कि हम अल्लाह को खुश करें? अरे नहीं भाई नहीं, हम सिर्फ खुद को ही खुश रख लेना तो यही असल काम है। ठीक हो गया?
एक सवाल था,
इरशाद
सर, अभी आपने वो कहा कि वो नस्मा जो वो चला जाता है, तो असर के वक्त तक, मतलब इस कुर्रे के वक्त तक वो यहीं रहेगा, फिर यहीं जिंदगी गुजारेगा?
नहीं, असर का मतलब क्या ले रहे हैं आप?
मतलब इस कुर्रे का जो वक्त,
नहीं कुर्रे का जरूरी नहीं है, नौ इंसानी का उसका है, तो हीन है, है? भाई नौ इंसानी पे जो वक्त गुजर रहा है उसका, वो बतौर हीन उसके साथ तो जुड़ा तो हुआ है, लेकिन उसकी अपनी एक अलहदा फाइल भी बन रही है, और वो ऊपर जाके अपने इंडिविजुअली रहेगा या कि वो नौ में जज़्ब हो जाएगा? थैंक यू, अगर आपको समझ आ गई तो मेरे लिए एजाज की बात है भाई। जी जनाब, और कोई सवाल?
सर अमूमन लोग इस्तखारा करते हैं कुछ बातों का पता लगाने के लिए कि ये बेहतर है नहीं, तो ये जानने का तरीका मुराकबे में किसी तरीके से है क्या?
पहले तो ये देखें कि इस्तखारा कहते किसे। हजूर मुर्शिद करीम ने इरशाद फरमाया कि इस्तखारा अल्लाह से मशवरा करना है। क्या? इस्तखारे का मतलब अल्लाह से मशवरा करना है कि मैं ये काम करूं या ना करूं, करना तो आपने, असूलन कानूनन इखलाकन फैसला आपको करना है, हाँ या नहीं। आपने अपनी अकल के इस्तेमाल के साथ साथ चाहा कि आप अल्लाह से भी मशवरा करें, तो आपने इस्तखारा फरमाया। अब चूंकि वो हम बहुत ही महदूद शऊर के साथ कर रहे हैं और सारे फैसले ही उठा के अल्लाह पे छोड़ दिए, जो अपने करने के काम है वो भी अल्लाह के खाते में डाल दिए, तो अब वहां से क्या मशवरा आएगा? वो आपकी समझ में नहीं आएगा, फिर आपको ख्वाब में बताया जाएगा, वो आप मजीद नहीं समझेंगे, फिर आप किसी से ताबीर लेंगे, वो पता नहीं क्या इंटरप्रेट कर दे। तो ये सारा निजाम खुद बात ना समझने पे चल रहा है। अगर हम बात को समझ लें और ये जान लें कि हमें जो नियत का इख्तियार दिया गया, हमने उसके तहत खुद फैसले करने और उनके नताइज भुगतने, और करें मैं क्या बता गया? कि जब आपको पता है कि मैंने जो भी फैसला किया उसका नतीजा मुझी को भोगना है, मुझी को भुगतना है, तो आप कैसा फैसला करेंगे? अब جب بھی آپ اللہ سے مشورہ کرتے ہیں اللہ میاں تو اسی طرح کا مشورہ دیتے ہیں کہ میاں تم نے خود کرنا ہے, خود نمٹنا ہے, جو تمہیں اچھا لگتا ہے کرو, یہ بیسک قوانین کو وائلیٹ نہیں کرنا, باقی یہ کرو. اللہ میاں کی تو ہر, میں نے تو جتنے بھی استخارے دیکھے ان کے پیچھے لوگوں کے جو ان کو میسج ملتا ہے وہ یہی ہوتا ہے, ہاں یا نہیں؟ دیکھیں نا استخارہ. اب آپ مراقبے میں کرنا چاہتے ہیں تو بجائے استخارہ, مطلب ہے کہ آپ مشورہ کر رہے ہیں تو آپ اپنے پیر و مرشد کے توسط سے کریں گے, کیونکہ آپ تصور شیخ کے مراقبے میں کس سے بات کر رہے ہیں؟ تو جب آپ اپنے پیر و مرشد سے رابطے میں ہیں تو آپ نے ان سے مشورہ کر لیا, ٹھیک ہے, اب وہ اللہ سے پوچھ کے بتائیں گے یا اپنے پاس سے بتا دیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ ان کی طرز فکر کہہ رہا فلّہ ہے, ان کی طرز فکر کہہ رہا فلّہ ہے, یہی طرز ہم میں اور آپ اپنانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کی نقل مارنی ہے. تو جب بھی مشورہ کریں گے تو آپ مراقبے میں مشورے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے پیر و مرشد کی طرف متوجہ ہو کے اپنا سوال ذہن میں دہراتے رہیں, وہاں سے انسپائریشن آ جائے گی. امید ہے کہ یہ بات واضح ہو گئی ہوگی آپ کو.
جی سر, شکریہ, السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام, کیا لیں عرفان؟
جی اللہ کا شکر سر, الحمدللہ, ابا جان کی نظر کرم ہے, آپ سنائیں, آپ ٹھیک ہیں سر؟
اللہ کا کرم. جی سوال فرمائیے
سر. یہ جی سر, نسمہ کے بارے میں کچھ وضاحت فرما دیں. سر نسمہ اصل میں آسان لفظوں میں کیا ہے؟
آسان ترین لفظوں میں اسے ذہن کہتے ہیں.
اور روح جو ہے وہ ذہن سے جو ہے ایک علیحدہ سے کوئی اس کی آئیڈینٹی ہے یا
جی جی میں عرض کرنے لگا ہوں, یہ اب سوال بنا آپ کا. دیکھیے ہمیں ایک نظام کو سمجھنا ہے, ہم ایک ذات ہیں, انا ہیں. یہ ذات جو ہے یہ جس انرجی کو استعمال کرے گی اس کا نام ہے روح. آگے اس کے ٹیئرز ہیں, تین درجے ہیں. ذات جس انرجی سے کام لے گی اس کا نام ہے روح, اور روح جو ہے وہ اپنی صلاحیتیں رکھتی ہے, وہ انرجی اپنی کچھ کیریکٹرسٹکس رکھتی ہے نا. اب یہ جو کیریکٹرسٹکس آف دا روح ہیں ان کو لے کے جب ہم آگے چلیں گے تو دیکھتے ہیں کہ یہ روح کے کیریکٹرسٹکس کو انا کیسے استعمال کرتی ہے, وہ ایک میڈیم بناتی ہے اور اس کا نام ہے نسمہ, یعنی ذہن. اب ذہن جو ہے وہ انٹرمیڈیٹری کام کر رہا ہے, وہ باڈی کو بھی کنٹرول کر رہا ہے اور ادھر وہ روح سے بھی ریلیٹڈ ہے. اب نسمہ اپنی ذات کا کتنا شعور رکھتا ہے یا نہیں رکھتا, روح اپنی ذات کا کتنا شعور رکھتی ہے, یعنی جس کی روح ہے وہ اپنی ذات کا کتنا شعور رکھتا ہے. اب جب یہ آپ نسمہ سے کام لینا سیکھتے ہیں یا نسمہ کا استعمال کرتے ہیں تو یہ غور و فکر جو لفظ ہے, غور و فکر یہ ہے نسمہ کا اصل کام. اس کے ذیلی کام یہ ہے کہ اس نے جسم کو چلانا ہے. جب وہ غور کرے گا, فکر کرے گا, تفکر کرے گا, گہرائی میں بات کو سمجھنا سیکھتا چلا جائے گا تو وہ کیا ہوگا, اپنی روح سے آشنا ہوگا, اس انرجی سے واقف ہوگا جو اس کو بھی چلا رہی ہے اور آگے اس کے کاموں کو بھی کروا رہی ہے. لیکن یہ روح کی ساری انرجیز جو ہیں وہ کہاں کس سے ریلیٹڈ ہیں؟ اب یہاں پہ میں آپ کی اجازت سے جملہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں. دیکھیے ہم ساروں کو ادھوری بات سن کر ادھوری بات میں اٹکنے کا بڑا شوق ہے. ایک تو شوق ہوتا ہے, ایک شوق ہوتا ہے. تو یہ جو شوق ہے نا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے आप अपने जहन में ये बात वाजे कर लें, आपके जहन में ये बात वाजे होनी चाहिए कि एक चीज है जात, जो तजल्लिए जात का एक नुक्ता है जो आगे रूह से रिलेटेड है, रूह जो है वो आगे नस्मा से रिलेटेड है, और नस्मा जो है ये आगे बॉडी को कंट्रोल करती है और उसको चलाती है। ठीक हो गया जी? जी तो ये चार दर्जे वाजे कर दिए कि जात, फिर रूह, फिर नस्मा और फिर जिस्म, ये चारों आपके जेन में वाजे होने चाहिए।
ठीक सर,
बहुत शुक्रिया जी। और कोई सवाल?
ये जो नुक्ता जात का जो जिक्र किया जाता है रूहानियत के अंदर, तो नुक्ता जात जो है बेसिकली है एकता।
मेरे से बात कौन कर रहा है, ये सवाल कौन पूछ रहा है?
सर इरफान मुस्तफा जिम्मी बात कर रहा
हूं। जी नहीं, आप कहेंगे कि मैं पूछ रहा हूँ, आपको जवाब कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूँ। ये आपकी मैं जो है ये आपका नुक्ता जात।
ठीक है,
मैं जब अब देखें आपके जहन में सवाल भी अल्लाह डाल रहा है और मेरे जहन में जवाब भी अल्लाह ही उतार रहा है, या ये कहेंगे कि आपकी जात ने वो सवाल जो है आपके जहन में उतारा, वो जो जहन में सवाल उतारने की एनर्जी है उसका नाम रूह है, और वहां से देखें हजूर कलंदर बाब औलिया ने हर जगह चार चीजों का तस्करा किया, रूह, राह, रूह, रोया और रोयत। गौर करें, मैं भी आपको इन चार की तरफ मतवज्जो कर रहा हूं, इन्हीं को चार शऊर कहा गया है। तो ये जो मैं है ना, लफ्ज मैं, ये मेरी जात है। जब आप बोलते हैं मैं, वो आप अपनी जात को रेफर कर रहे हैं। अब ये जात में कितनी एनर्जी छुपी हुई है, वो आपकी रूह है।
बिल्कुल ठीक।
अब आप उस एनर्जीज को इस्तेमाल किससे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये नस्म है। और आगे उसका डिस्प्ले बॉडी पे कितना और कैसे हो रहा है, ये आपका जिस्म है, ये मादी वजूद है। फिर एक वक्त आता है जब आप इस मादी वजूद के तजुर्बात से जहन इतना कुछ सीख लेता है कि वो इस कहता है इसकी जरूरत नहीं है, इसे हटाओ, अब मैं डायरेक्ट काम करूंगा। ठीक हो गया
जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर ये पूछना था कि जब इंसान इंतकाल करता है तो जो इंसान का जो नस्मा जो है वो कब्र में क्या रहता है और अराफ में क्या शिफ्ट होता है?
असल में ये जमानी और मकानी फासलों का चक्कर है
जी।
अब देखे ना, मेरे और आपके शऊर के लिए जो कब्र है मेरे वालिद साहब की, मेरे शऊर के मुताबिक वो उसके अंदर है
जी।
ये मेरे देखने का जाविया है या तर्ज इदराक है। वहां पे कब्र के अंदर तो उनका जिस्म जो था वो पता नहीं सलामत है या नहीं है, पिंजरा पड़ा है या वो भी नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन उसी कब्र को असल में हम कहेंगे कि उनका इराफ बन गया वहां, यानी उनका नस्मा उस कब्र के हवाले से ऊपर के जोन में किसी जगह प्लेस कर दिया गया। वो अपने उस घर से दाएं बाएं इधर उधर घूमे फिरे, जो मर्जी करें, वो वहां की कैफियत है, इसी दुनिया की तरह वो वहां पे एक इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजार रहे हैं। अब जब मैं आपके मतलब है कि मैं आपके साथ किसी के मजार पे गया, तो यूं समझें कि वो बंदा दसवें माले पे रहता है, मैं जाके नीचे उसके नाम की बटन, घंटी का बटन दबाता हूँ, तो वो ऊपर से झांक के देखता है कि नीचे कौन आया।
बिल्कुल ठीक है।
ये सब बातें हजूर मुर्शिद करीम ने अपनी मुख्तलिफ नशिस्तों में बड़ी वजाहत से बयान की है। देखे ना, हम और आपने इन चीजों का खुद मुशाहिदा तो नहीं किया, हम तो सुनी सुनाई पे बात कर रहे हैं, लेकिन कम से कम हमारे कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होने चाहिए ना कि वो हमें क्या बता रहे हैं, यानी मुर्शिद करीम ने हमें क्या बताया है।
जी बिल्कुल सर।
अब जब आप इस पे तफक्कुर करेंगे कि कब्र में पड़ा हुआ मुर्दा जो है उसके साथ कुछ नहीं है, उसका जहन सिर्फ उस मुकाम से मेरे और आपके लिए रिलेटेड है। मसलन अब आप हजूर कलंदर बाबा औलिया के मजार पे जाते हैं, दूसरा ये कि आप हजूर कलंदर बाबा औलिया को अपने घर में बैठ के याद करते हैं, दोनों की कैफियतों में फर्क है या नहीं है?
जी बिल्कुल है सर।
वो फर्क क्या है? वो मेरे मादी शऊर का फर्क है। अगर मैं इस दर्जे पे पहुंच जाऊं, इस गहराई में फील करना सीख जाऊं, तो मुझे हजूर कलंदर बाबा औलिया के दरबार पे जाए बगैर उनकी कुर्बत और सोबत और उसकी महसूस हो सकती है, हाँ या नहीं?
जी सर बिल्कुल।
अब जिन लोग
लंदन टावर,
वो निगाह का दजाविया बताया उन्होंने कि निगाह की नातवानी दूर करनी है। लफ्ज क्या आया उसमें?
जी नातवानी दूर करनी।
नातवानी, ये सारा चक्कर जो है इस नातवानी का है।
मानवी सूरत देखने के लिए किसी
जी की? जब आप निगाह की तवानाई में इजाफा कर लेंगे, अब देखे यहाँ लफ्ज उन्होंने नस्मा नहीं कहा, जहन नहीं कहा, निगाह कहा, यानी हर हिस की अपनी एक तवानाई है। ठीक हो गया ना?
जी सर।
चले बहुत शुक्रिया जी, आपने इतनी दिलचस्पी से ये बात पूछी और इतना मेरा भी जहन इस तरफ मतवजह किया।
आपका बहुत शुक्रिया। मैं असल में जो है कुछ ये पॉइंट थे तो मैंने कहा बाकी भी जो सुन रहे हैं उनको भी
बहुत नवाजी,
क्योंकि हमारे यहाँ पे क्योंकि जो है ना हमारे सिलसिले में भी लोग जो है वो नस्मा को समझ नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ पे नस्मा है, तो असल में जो हम जहन यूज कर रहे हैं यही नस्मा है।
बेशक बेशक, जो चीज आपको महसूस करवा रही है, अब्बा ने देखे ना अपनी तकारीर में, खास तौर पे सालाना खुतबात में जो उर्स के मौके पे वो देते हैं, उसमें किस बात पे इसरार किया कि जिस्म जो है ये लिबास है, जिस्म जो है ये लिबास है, जिस्म जो है ये लिबास है, लिबास के अंदर जो चीज चल रही है, अब वो पहले दर्जे पे मुतारिफ कराने के लिए उन्होंने लफ्ज रूह बोला। ठीक है ना?
जी।
क्योंकि पहला जोन ही नहीं पार हो रहा, बाकी जोन कैसे क्लियर करा दें, इसलिए मैंने कहा कि चूंकि आप माशाल्लाह काफी आगे हैं, इसलिए मैंने तवज्जो दिला दी कि भाई आप लोग इस चारों को एक साथ लेके चलें, यानी जात को इग्नोर ना करें। देखिए ना, हजूर कलंदर बाबा औलिया ने लौह कलम में क्या इरशाद फरमाया, कुरान हमें तीन हस्तियों से मुतारिफ कराता है, जात, सिफात और कायनात। तो जात जो है वो उसको ही रूह कह ले, तो फिर सिफात को आपको जैन कहना पड़ेगा, तो कायनात जो है जिसम हो गया।
ठीक हो गया,
ठीक हो गया ना?
जी सर। मैं सर चंद दिन पहले जो अब्बाजान से मुलाकात करके आया था, तो तकरीबन कोई डेढ़ घंटे की नशिस्त रही थी उनके साथ।
माशाल्लाह।
तो उसमें जो है अब्बाजान ने जो सबसे ज्यादा जो टाइम जो है जिस टॉपिक पे उन्होंने जो बात की थी वो कुरान फहमी थी।
सही, माशाल्लाह।
कुरान जो है समझना, हम जो है समझने की कोशिश नहीं करते, अदरवाइज कुरान के ज्यादातर जो अल्फाज हैं वो हमारी रोजमर्रा जुबान के अंदर जो है हम इस्तेमाल करते हैं।
बिल्कुल सही।
हाँ, तो फिर उन्होंने जो है कुछ सूरह फातिहा का, सूरह इखलास का भी जो है उन्होंने तर्जमा करके एग्जाम्पल दे के बताई कि ये जो है चीजें, ये अल्फाज हम अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब्बा जाने वहां पे एक और बात भी की कि उन्होंने कहते हैं कि मैंने जो है तकरीबन कोई 1.5 सिपारे की जो थी वो तशरी की थी, शरा फरमाई थी, तो वो पता नहीं कहाँ पे गुम हो गई। तो वो इसका जिक्र कर रहे थे, मैंने वो फेस टू फेस अब्बा जान से ये बात सुनी। पहले तो वैसे मैंने वैसे सुनी सुनाई बात थी, लेकिन अब्बा जान इसकी तस्दीक की कि इस पे उन्होंने वर्किंग की थी।
जी हाँ, बाद में इस दहशत से कि कहीं लोग जो है वो बलवाई ना कर दें, वो हटा दिया।
जी सर, ऐसा ही है।
देखे ना, बात ये है कि जी कुरान को समझना हमने है, समझाना अल्लाह ने, हर बंदे ने खुद समझना है। मेरी समझ आपके किसी काम की नहीं, आपकी समझ मेरे किसी काम की नहीं। भी सीधी सी बात है, देखो ना, तुमने अपनी कब्र में जाना है, मैंने अपनी कब्र में जाना है, हाँ या नहीं?
जी सर, बेशक।
अब मैं माफी चाहता हूँ, मैंने बेतकल्लुफी से लग तुम कहा। अर्ज ये है कि हर बंदे ने अपनी कब्र में खुद जाना है और खुद भोगना है जो भी उसने किया है। तो इसलिए हजूर मुर्शिदे करीम इसरार करते रहते हैं, यही इसरार कि भाई खुदा के वास्ते अल्लाह की बात को समझो, क्योंकि तुमने अल्टीमेटली अल्लाह के पास जाना है, उसकी बात समझना तो सीख लो।
जी सर,
ठीक है
जी सर।
चले, मेरा ख्याल है आज काफी हो गया इतना। या और कोई सवाल है किसी का? ठीक हो गया जी?
जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर।
चलिए, अपना ख्याल रखिए, सब अपना खुश रहिए, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज सर।
जी, वालेकुम अस्सलाम।